नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं कनकलता। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली पिछले वर्ष हुए हिंसक जेनजी प्रदर्शनों में कथित संलिप्तता के आरोप में गिरफ्तार। पश्चिम एशिया में तनाव जारी। सऊदी अरब सैन्य अड्डे पर ईरान के हमले में अमेरिका के 10 सैनिक घायल। इंडोनेशिया ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म के उपयोग पर लगाया प्रतिबंध। और क्रिकेट में इंडियन प्रीमियर लीग का 19वां संस्करण आज से बंगलुरु में शुरू। उद्घाटन मैच में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से। अब समाचार विस्तार से। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को पिछले साल हुए हिंसक जेनजी प्रदर्शनों में कथित संलिप्तता के आरोप में आज सुबह गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी गिरफ्तारी बालिंद शाह के देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने के एक दिन बाद हुई है। भक्तपुर जिला पुलिस रेंज के प्रमुख पुलिस अधीक्षक सूर्य बहादुर खड़का के अनुसार पूर्व प्रधानमंत्री को उनके आवास से गिरफ्तार किया गया। पूर्व गृह मंत्री रमेश लेखक को भी ओली के साथ हिरासत में लिया गया है। एक जांच समिति ने इस सप्ताह भ्रष्टाचार विरोधी प्रदर्शनों में हिंसक कार्रवाई को रोकने में विफल रहने के लिए 74 वर्षीय पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली पर मुकदमा चलाने की सिफारिश की थी। ये गिरफ्तारी प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह के मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण के ठीक एक दिन बाद हुई है। इसराइल द्वारा कल रात ईरान के प्रमुख इस्पात, बिजली और परमाणु संयंत्रों पर हमले तेज करने से पश्चिम एशिया में तनाव लगातार बढ़ रहा है। इससे मौजूदा संघर्ष और भी तेज हो गया है।
ईरान ने हमलों की निंदा करते हुए कहा कि ये राजनयिक प्रयासों को कमजोर करते हैं और वार्ता के लिए दी गई समय सीमा का उल्लंघन करते हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने सोशल मीडिया पोस्ट में चेतावनी दी कि ईरान के दो सबसे बड़े इस्पात संयंत्रों और संवेदनशील परमाणु संयंत्रों सहित प्रमुख बुनियादी ढांचों पर हमले के लिए इसराइल को भारी कीमत चुकानी होगी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्होंने समय सीमा इसलिए बढ़ाई क्योंकि अमरीका और ईरान के बीच अच्छी वार्ता चल रही थी और ईरान ने कई तेल टैंकरों को हॉर्मुज जल डमरू मध्य से गुजरने की अनुमति दी थी। दूसरी ओर कई मीडिया रिपोर्टों के अनुसार कल ईरान के मिसाइल हमले में सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर 10 अमरीकी सैनिक घायल हो गए और अमरीका के ईंधन भरने वाले कई विमान क्षतिग्रस्त हो गए। विश्व दर्पण के लिए विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से मानवीय सहायता की आवाजाही में तेजी लाने पर सहमति जताई है। ये जलडमरू मध्य दुनिया के सबसे व्यस्त तेल परिवहन मार्गों में से एक है और मौजूदा संघर्ष में एक महत्वपूर्ण अवरोध बिंदु है। एक रिपोर्ट।
संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत अली बहरेनी ने कहा कि इसके परमाणु संयंत्रों पर हमले जारी रहने के बावजूद ईरान ने मानवीय सहायता और कृषि सामग्री को इस महत्वपूर्ण जलमार्ग से गुजरने देने के संयुक्त राष्ट्र के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है। करीब एक महीने से चल रहे युद्ध के बाद ये सहायता योजना इस अवरोध बिंदु पर पहली बड़ी सफलता है। तेल और प्राकृतिक गैस की अवरुद्ध आपूर्ति तथा उर्वरकों पर प्रतिबंध दुनिया भर में कृषि और खाद्य सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर रहा है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री बहरेनी ने कहा कि ये कदम मानवीय प्रयासों का समर्थन करने और जरूरतमंदों तक आवश्यक सहायता बिना किसी देरी के पहुंचाने के लिए ईरान की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस बीच जब दुनिया होर्मुज जलडमरू मध्य के दबाव के प्रभाव से जूझ रही है, संयुक्त राष्ट्र ने इसके मानवीय परिणामों से निपटने के लिए एक कार्यबल की घोषणा की है। महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के प्रवक्ता स्टीफन डुजारिक ने कहा कि अपर महासचिव जॉर्ज मुरेरा दा सिल्वा के नेतृत्व में ये समूह कृषि संकट को टालने के लिए आवश्यक उर्वरकों और संबंधित कच्चे माल की आपूर्ति के लिए एक तंत्र विकसित करेगा। बिमल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मृगनैनी पांडे।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान में युद्ध समाप्त होने के बाद सऊदी अरब और इसराइल के लिए संबंध सामान्य करने का समय आ गया है। राष्ट्रपति ट्रंप मियामी में एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। ट्रंप अपने अब्राहम समझौते के प्रयासों के तहत पश्चिम एशिया की दो सबसे बड़ी शक्तियों इसराइल और सऊदी अरब पर वर्षों से संबंध सामान्य करने के लिए दबाव डाल रहे हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि ईरान के साथ युद्ध में सफलता पाने के लिए अमेरिका को थलसेना की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने कहा कि यह युद्ध कुछ हफ्तों में ही खत्म हो जाएगा। पेरिस में G7 विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद श्री रूबियो ने कहा कि अमरीकी अभियान तय समय से आगे बढ़ रहा है और बिना किसी लंबे जमीनी संघर्ष में उलझे अपने लक्ष्य हासिल कर सकता है। श्री रूबियो ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की युद्ध समाप्ति की 15 सूत्री योजना पर ईरान से अमेरिका को कोई औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं मिली है। फ्रांस सरकार ने पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के कारण उत्पन्न मूल्य अस्थिरता संकट से देश को बचाने के लिए 70 मिलियन यूरो की आपातकालीन सहायता योजना शुरू की है। एक बयान के अनुसार यह योजना परिवहन, कृषि और मत्स्य पालन क्षेत्रों के लिए है। अधिकारियों ने कहा कि यह कदम फ्रांस की खाद्य संप्रभुता की रक्षा और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। लघु एवं मध्यम आकार की सड़क परिवहन कंपनियों को इस योजना के तहत 50 मिलियन यूरो की सहायता मिलेगी। ये क्षेत्र विशिष्ट उपाय केवल अप्रैल महीने तक सीमित हैं। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। इंडोनेशिया में एक नया सरकारी नियम लागू हो गया है, जिसके अंतर्गत 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए उन डिजिटल प्लेटफॉर्म को प्रतिबंधित कर दिया गया है जो उन्हें अश्लीलता, साइबर बुलिंग, ऑनलाइन धोखाधड़ी की आदत के संपर्क में ला सकते हैं। अधिकारियों ने कहा है कि प्रतिबंध धीरे धीरे लागू किए जाएंगे ताकि सभी प्लेटफॉर्म को अनुपालन के लिए समय मिल सके। इंडोनेशिया की संचार और डिजिटल मामलों के मंत्री ने इस नियम की घोषणा करते हुए कहा कि इससे देश के लगभग 7 करोड़ बच्चे प्रभावित होंगे। इस कदम के साथ इंडोनेशिया दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश बन गया है जिसने बच्चों को यूट्यूब, टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम, थ्रेड्स, बिगो लाइव और रोब्लॉक्स जैसे प्लेटफॉर्म पर खाते बनाने से प्रतिबंधित कर दिया है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने फ्रांस में G7 विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान वैश्विक आर्थिक सुरक्षा के लिए नौवहन की स्वतंत्रता के महत्व पर बल दिया। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि बैठक के दौरान उन्होंने महत्वपूर्ण खनिजों पर इनकी मूल्य श्रृंखला के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए चल रहे कदमों की सराहना की और नार्को आतंकवाद के गठजोड़ से जुड़े खतरे पर भी चर्चा की। इससे पहले विदेश मंत्री ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की और बैठक से अलग सार्थक बातचीत भी की। सऊदी अरब के विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान के साथ बैठक के दौरान डॉ जयशंकर ने पश्चिम एशिया पर श्री फरहान के आकलन की सराहना की और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग पर भी चर्चा की। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि आम सहमति से निर्णय लेने की प्रक्रिया को पुनः मजबूत करने के लिए विश्वास को फिर से बनाना जरूरी है। इस पर कोई समझौता नहीं हो सकता और यह विश्व व्यापार संगठन की नींव है। श्री गोयल ने यह बात कैमरून में विश्व व्यापार संगठन के 14वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में मंत्रिस्तर के एक सत्र को संबोधित करते हुए कही। इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2026 का 19वां संस्करण आज से शुरू हो रहा है। उद्घाटन मैच में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। यह मुकाबला शाम 7:30 बजे से बंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा। ये टूर्नामेंट 31 मई तक चलेगा। एक रिपोर्ट।
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम आज कप्तान रजत पाटीदार की अगुवाई में इस संस्करण का अपना पहला मैच खेलेगी। वहीं सनराइजर्स हैदराबाद की कप्तानी ईशान किशन करेंगे, जिन्होंने ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज पैट कमिंस के चोटिल होने के बाद टीम की कमान संभाली है। इम्पैक्ट प्लेयर नियम इस संस्करण में भी जारी रहेगा। पिछले वर्ष जून में बेंगलुरु की खिताबी जीत के जश्न के दौरान स्टेडियम के बाहर भगदड़ में जान गंवाने वाले 11 प्रशंसकों के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने पारंपरिक उद्घाटन समारोह रद्द कर दिया है। अधिकारियों ने घोषणा की कि उनकी स्मृति में इस सत्र में स्टेडियम की 11 सीटें स्थायी रूप से खाली रहेंगी। विश्व दर्पण के लिए अर्जुन शर्मा।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली पिछले वर्ष हुए हिंसक जेंजी प्रदर्शनों में कथित संलिप्तता के आरोप में गिरफ्तार। पश्चिम एशिया में तनाव जारी। सऊदी अरब सैन्य अड्डे पर ईरान के हमले में अमेरिका के 10 सैनिक घायल। इंडोनेशिया ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया। और क्रिकेट में इंडियन प्रीमियर लीग का 19वां संस्करण आज से बंगलुरु में शुरू। उद्घाटन मैच में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।